हरे कृष्णा। आप सभी का इस भगवद्गीता सार कार्यक्रम में स्वागत है और आज हम भगवद्गीता के 11वां अध्याय जिसका शीर्षक विराट रूप है उसकी चर्चा करेंगे। भगवद्गीता के 10वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस सभी प्रकार के ऐश्वर्य या विभूति हैं मेरे एक अंश के समान है। मैं तो इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित हूँ, हर जगह मैं प्रेजेंट हूँ। तो जब अर्जुन भगवान की इस बात को सुनते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, प्रभु आपने अपना ऐश्वर्य या जो विभूति हैं उसके बारे में बताया तो है, पर आप कैसे इस पूरी भौतिक दुनिया में उपस्थित हैं? अगर आप मुझे उसका एक बार दर्शन भी करा दें तो मन बड़ा ही शांत हो जाएगा। सोचने वाली बात है ये, कहीं ये जो चर्चा है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, ये कहीं उनके इंद्रप्रस्थ के महल में नहीं हो रही, ये युद्ध भूमि में, युद्ध दोनों पार्टीज के बीच में हो रही है। कृष्ण भी रथ पर बैठे हैं, अर्जुन भी रथ पर बैठे हैं और इस समय अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। तो इस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं। कृष्ण भक्त वत्सला उनका नाम है, मतलब अपने भक्तों की बात को कभी नहीं नकारते। ये वही कृष्ण हैं जो भगवद्गीता के शुरुआत में, जब आप भगवद्गीता में सबसे पहला चित्र देखते हैं तो क्या देखते हैं? कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। क्यों बने हैं? ये अर्जुन की इच्छा थी। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं और कृष्ण अर्जुन की बात को मान लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, या हमें देखने को मिलता है भगवान और भक्त के बीच का प्रेम का संबंध। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के नाम से भगवान हटा दें, सामने वाले व्यक्ति तो ये चित्र दिखाएं और उनसे पूछिए, बताइए भगवान कौन है, क्या बोलेंगे वो? ज़्यादातर लोग बोलेंगे जो रथ पे बैठा है वही भगवान होना चाहिए, हाँ या ना? सेवक जो है भक्त होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प कहिए रिश्ता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। कौन मालिक है, कौन सेवक है, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इस 11वें अध्याय में आप देखेंगे, फिर अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं विराट रूप के दर्शन कराइए। भगवान बोल सकते थे, भाई ये समय ऐसा प्रश्न पूछने का, युद्ध शुरू होने वाला है, कभी भी कुछ भी बोल बैठता है, कह सकते थे या नहीं? पर भगवान कहते हैं, अर्जुन सो बी इट, तुम्हारी इच्छा है। फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करते हैं और विराट रूप दिखाते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भगवद्गीता का, जहाँ पे कई प्रकार के संशय समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहला संशय, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है? कई बार लोग बोलते हैं विराट रूप सर्वश्रेष्ठ है, तो सबसे पहली बात तो वो क्लियर होती है, विराट रूप नहीं, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि विराट रूप से कृष्ण नहीं निकले, पर कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन कराए। दूसरी बात, कई बार लोगों के बीच में मतभेद होता है नारायण बड़े या कृष्ण बड़े, तो वो भी क्लियर हो जाता है इस चैप्टर से। जो अंत में जब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप से अपना टू हैंडेड फॉर्म कृष्ण का लेते हैं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज विष्णु या नारायण का दर्शन भी कराते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान का स्वरूप, कौन सा स्वरूप जिसके संग हमें संबंध जोड़ना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद का भक्त प्रभुपाद के पास आता है, कहता है प्रभुपाद, मैंने जब से आपके 11वें अध्याय भगवद्गीता में विराट रूप का वर्णन सुना है, मैं विराट रूप के प्रति बड़ा ही आकर्षित हो गया हूँ, क्या मैं विराट रूप की आराधना कर सकता हूँ? प्रभुपाद बोलते हैं, भाई कहाँ से शुरू करेगा कपड़े पहनाने, अगर उनको अस्त्र शस्त्र या श्रृंगार करेगा तो कहाँ से शुरू करेगा, भोग खिलाएगा तो कहाँ से भोग लाएगा इतना? तो भक्त को समझ आ जाता है नामुमकिन है, तो समझ जाता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें इस अध्याय से सीखने को मिलती है, लॉर्ड इज़ अ पर्सन who loves to love his devotees, who loves to have a reciprocation with his devotees. भगवान का मतलब वो नहीं जो बहुत जल्द क्रोध खा जाते हों और उनकी बात को ना माने तो क्रोध में आकर दंड देते हों, नहीं। भगवान बड़े ही ही लव्स एडवेंचर, ही लव्स टू हैव डीलिंग्स विद हिज डिवोटीज। और वही चीज़ इस 11वें अध्याय के अंत में अर्जुन और कृष्ण के कॉन्वर्जेशन से उभर कर आती है। तो आइए 11वां अध्याय शुरू करते हैं, जहाँ श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 4 तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे कृपा करके अपने उस विराट रूप का दर्शन कराइए। और भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन सो बी इट। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उस विराट रूप के दर्शन दिखाने से पहले उसका वर्णन करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, बोलते हैं अर्जुन इस रूप में जो मैं तुम्हें विराट रूप दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, इस रूप में तुम मेरे अंदर समस्त इस ब्रह्मांड को देखोगे। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, इस मेरे इस रूप के अंदर तुम समस्त देवताओं को देखोगे, समस्त जीवों को देखोगे, समस्त पहाड़ झरने सब कुछ को देखोगे, घबराना मत। और फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन बट तुम इस समय इन भौतिक आँखों से मेरे इस दिव्य दर्शन को नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं तुम्हें दृश्य देता हूँ या दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे इस दिव्य दर्शन को देख सको। प्रश्न बनता है, कृष्ण का 200 फॉर्म अगर सर्वश्रेष्ठ है तो अर्जुन ने इस विराट रूप के दर्शन की मांग करी ही क्यों, क्या आवश्यकता थी? तो आचार्य वर बताते हैं अर्जुन ने विराट रूप की प्रार्थना इसलिए करी, उनकी अभिलाषा इसलिए करी, दो चीज़ के लिए। सबसे पहले आने वाले समय तक ये बताने के लिए कि कृष्ण से बड़ा कोई और नहीं है, और दूसरा अगर कलयुग में आगे जाके कोई अम्मा अम्मी और कोई मामा या कोई चाचा या काका बोलेगा मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, तो उसके लिए एक टेस्ट रख दिया है, भगवान है, विराट रूप दिखा, भगवान होने का विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार भगवान को एक प्रकार से प्रशंसा करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए भगवान कौन है, इसलिए अर्जुन भगवान से इस प्रकार विराट रूप की प्रार्थना करते हैं। 9वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं, 8वें श्लोक तक, फिर 9वें श्लोक में संजय बोलना शुरू करते हैं। संजय किससे बोल रहे हैं? कर्ण से, दुर्योधन से, दुशासन, शकुनी, किससे संजय बात कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कौन है? पूरे संसार का राजा, हस्तिनापुर का राजा। संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले हैं, और बड़े ही मजे की बात है, सोचने वाली बात है। अभी जब हम विराट रूप का आगे दर्शन देखेंगे तो उस दर्शन में देखने को मिलता है, अर्जुन बताते हैं प्रभु मैं आपके इस विराट रूप में सभी योद्धाओं को, चाहे वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या दुर्योधन या अनेक दुर्योधन के भाई हों, मैं उन सभी को आपके मुंह में जाता हुआ देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ वो कैसे उनका सर्वनाश हो रहा है। यही सब बात संजय धृतराष्ट्र को भी बताता है, पर ढीठ देखो कितना था वो आदमी, अपने बच्चों की मृत्यु की भविष्यवाणी को सुनने के बावजूद, यहाँ तक कि उसको ये भी पता चल गया था युद्ध शुरू होने के बाद अंत में कौरव हारेंगे, पांडव विजय रहेंगे, फिर भी धृतराष्ट्र युद्ध को टाल नहीं सका। राजा था, टालने की क्षमता थी, युधिष्ठिर महाराज कभी मना नहीं करते। अगर वो दुर्योधन को आदेश दे देते कि इनका राज्य वापस करो तो दुर्योधन क्या करता? फिर भी धृतराष्ट्र ने नहीं करा। इस प्रकार अपनी ढीठता के कारण धृतराष्ट्र ने केवल अपना ही नहीं समाज का भी सर्वनाश करा। इसलिए जब व्यक्ति स्वार्थ की भावना से जीवन व्यतीत करता है तो केवल अपना ही सर्वनाश नहीं, साथ ही साथ अपने सगे संबंधी और समाज का भी सर्वनाश करता है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो धृतराष्ट्र के कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलती है। तो आगे यहाँ संजय 9 श्लोक से लेकर 14 श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र को इस विराट रूप का वर्णन करते हैं। अब धृतराष्ट्र जो अंधे हैं और यहाँ संजय कमेंट्री दे रहे हैं, तो अपने तरीके से जो बेस्ट तरीके से विराट रूप का दर्शन समझा पाएं उस प्रकार समझाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं श्लोक संख्या 12 के अंदर, कहते हैं हे धृतराष्ट्र इस विराट रूप के बारे में मैं क्या बताऊं? अगर लाखों करोड़ों की संख्या में सूर्य आसमान में उगाए तो जो उससे रोशनी निकलेगी तब भी शायद, जो आज विराट रूप के दर्शन से रोशनी हो रही है तब भी चाहे इन लाखों करोड़ों सूर्य के उगने से वो रोशनी का सामना ना हो पाए। इस प्रकार ये विराट रूप जो है इसने पूरे स्वर्ग को ढक दिया है और इतनी तेज से रोशनी निकल रही है कि आंखों से देखा नहीं जा रहा है। इस प्रकार संजय भगवान के विराट रूप का सारांश में धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं, और फिर श्लोक संख्या 15 से लेकर तकरीबन 45 तक अर्जुन अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं। उन्होंने विराट रूप को देखकर क्या सीखा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इस विराट रूप का दर्शन केवल अर्जुन ने लिया या किसी और ने भी लिया? तो बताया जाता है, अर्जुन के अलावा विराट रूप का दर्शन कोई नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को ही दृष्टि दी थी। हाँ या ना? शुरुआत में कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम इस विराट रूप के दर्शन नहीं ले सकते, मैं तुम्हें जब तक उसकी दृष्टि नहीं देता। इसी प्रकार किसी और ने इस विराट रूप के दर्शन नहीं करे थे। और फिर 15 श्लोक से चर्चा शुरू होती है अर्जुन की रिएक्शन की, जब उस विराट रूप को देखते हैं। अर्जुन तो बड़े घबरा जाते हैं और देखते हैं कैसे समस्त ब्रह्मांड इस विराट रूप में छुपा हुआ है। इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। 360 डिग्री मतलब जिस तरफ भी अर्जुन मुंह घुमाए, उस हर डायरेक्शन में इनको विराट रूप नज़र आ रहा है। उनको विराट रूप के पेट से नेवा से कमल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर ब्रह्मा बैठे हैं। वहाँ इनको शिव नज़र आ रहे हैं, नारद, गणेश इत्यादि सभी देवी देवता नज़र आ रहे हैं। सभी इस विराट रूप के अंदर अंश बने हुए हैं। और फिर अर्जुन को कौरवों की समस्त सेना, यहाँ तक कि पांडवों के संग जो युद्ध करने के लिए जो सेना आई थी, वो सारी की सारी सेनाएँ अर्जुन अपने आँखों से देखते हैं उस विराट रूप के मुँह में जाती हुई। और विराट रूप के रूप में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु वो समस्त सेनाओं का नाश कर रहे हैं और मुख से इस प्रकार खून की नदी बह रही है। अर्जुन घबरा जाते हैं और घबरा के बोलते हैं, कौन हो आप? आपको तो मैंने आज तक नहीं देखा, कृपा करके मुझे बताइए। और फिर भगवान श्री कृष्ण 32वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन अब ये विराट रूप बोल रहे हैं और कहते हैं, कालोस्मि। अर्जुन मैं काल हूँ, काल के रूप में मैं सबको सर्वनाश करने के लिए आया हूँ। काल हर जीव के जीवन में 6 प्रकार के बदलाव लाता है। पहला बर्थ, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मेंटेनेंस, चौथा बाय प्रोडक्ट्स, 5वां बुढ़ापा और 6ठा मृत्यु। इस प्रकार काल के प्रभाव में सब कुछ नाश होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 33वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन सब कुछ तो मेरा करा हुआ है, जो मेरी इच्छा है अंत में तो वो पूर्ण होके ही रहेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं अर्जुन, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। इसलिए जो मेरी इच्छा है उसमें सहयोगी बनो, उसके विरुद्ध मत खड़े हो। अगर आप मेरे सहयोगी बनोगे तो आपका गुणगान होगा, आपकी प्रशंसा होगी। हे अर्जुन, 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयदत्त, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को तो वैसे ही खत्म कर दिया है, तो तुम क्यों युद्ध करने से घबराते हो? मैं चाहता हूँ तुम अपने अस्त्र उठाओ और इस युद्ध को जीतने का क्रेडिट अपने सिर पे लो। तो शिला प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, क्यों भगवान चाहते हैं अर्जुन युद्ध लड़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निर्णय ले लिया है, इस बात का निश्चित है कि सारे के सारे कौरव युद्ध में मारे जाएंगे, भगवान क्यों चाहते कि अर्जुन फिर भी युद्ध लड़ें? उसका एक सरल जवाब है, वो ये कि भगवान को बड़ा प्रसन्नता मिलती है जब उनके भक्तों की कोई गुणगान करता है। जैसे उदाहरण के रूप में, युद्ध समाप्त हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है, और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को सब कह रहे हैं कि अब तो आप राजा बनिए। पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नहीं, मैं नहीं राजा बन सकता, मेरे कारण लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, कितनी माताएं विधवा हो गई हैं, कितने बच्चियों ने और बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खो दिया है, मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध को लड़ा और उसके साथ ही साथ करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। सब समझाने का प्रयत्न करते हैं, कुंती, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, यहाँ तक कि व्यासदेव, नारद मुनि, अंत में श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर अभी तो यही आवश्यक है कि हम सब हस्तिनापुर जाएं, आप राज्याभिषेक कराएं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मन में उठे संशय को भीष्म पितामह के सामने रखिए। मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप जब भीष्म पितामह से पूछने जाएंगे, वो आपके सारे संशय को समाप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उकसाते हैं कि वो भीष्म पितामह की शरण लें। और जब भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर, कृष्ण, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब पहुँचते हैं, तो भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो? जो भी जवाब मैं तुम्हें दूंगा वह किसकी क्षमता के बल पर दूंगा? सब श्री कृष्ण के बल पर। श्री कृष्ण तुम्हारे संग खड़े हैं, तुम आज फिर भी यहाँ मुझसे प्रश्न पूछने आए हो, इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि इस अंतिम समय में मुझे तुम सबका संग मिले और तुम्हारे जरिए भगवान मेरी प्रशंसा कराना चाहते हैं, मेरा गुणगान कराना चाहते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, कृष्ण तुम्हें हस्तिनापुर से दोबारा कुरुक्षेत्र लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण विराट रूप के रूप में तो ऑलरेडी सब कौरवों का नाश हो चुका है, फिर भी कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम इसका क्रेडिट लो। ये है भगवान और भक्त के बीच का मधुर संबंध। तो प्रभुपाद अपने 34वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत खूबसूरत पद लिखते हैं, सारांश में पढ़कर उसका मतलब समझाता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं हर प्लान भगवान के द्वारा बनाया होता है, पर भगवान इतने कंपैशनेट होते हैं, कृपालु होते हैं, वो चाहते हैं उसका श्रेय भगवान के भक्तों को मिले। इसलिए हमारा जो जीवन है ये हमें निश्चित करना चाहिए कि हम इस प्रकार व्यतीत करें जो भगवान की इच्छाओं से मेल खाता हो, ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं हमें क्या पता भगवान की इच्छा क्या है, तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान की इच्छा क्या है, वही इच्छा है जो भगवान ने भगवद्गीता में अर्जुन को समझाई है। अगर आपको वो इच्छा अभी भी समझ नहीं आती तो आप एक प्रमाणिक गुरु की शरण लीजिए जो परंपरागत तरीके से भगवान की भगवद्गीता का ज्ञान का अध्ययन करता हो, जीवन में उतारता है और दूसरों को सिखाता है। ऐसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर जो उनकी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं में उनको मदद करने का प्रयत्न करें। उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई अंतर नहीं होता, मतलब शुद्ध भक्तों की इच्छाओं में और भगवान की इच्छाओं में कोई अंतर नहीं होता। अगर आप उनकी इच्छाओं में सहयोग देते हैं तो मतलब भगवान की इच्छा में सहयोग देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कैसे हमें अपना जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। और फिर 35वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अब अर्जुन भगवान से फिर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और श्लोक संख्या 36 से लेकर श्लोक संख्या 46 तक फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु आप परम पिता हो, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हो, अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन को समझ आता है मैंने पिछले अध्याय में भगवान को भगवान तो बोला था पर उनके ऐश्वर्य को मैं अभी भी नहीं समझता था जब तक मैंने इस विराट रूप का दर्शन नहीं लिया। और अब अर्जुन के मन में इतना अफसोस जागृत होता है उन दिनों को याद करते हुए जहाँ उन्होंने कृष्ण को अपना सखा समझा, कृष्ण के संग वैसा व्यवहार करा जैसा कोई एक मित्र अपने मित्र के संग व्यवहार करता है। उस चीज़ को सोचकर उनको बड़ा ही अफसोस लगता है कि मैं कैसे परम ईश्वर भगवान के संग इस प्रकार का व्यवहार कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को सोचते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण या विराट रूप से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस चीज़ का उल्लेख अर्जुन भगवद्गीता के 43वें श्लोक में करते हैं और 44 और 45वें श्लोक में, प्रभु मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, कृपा करके इस भयानक रूप के दर्शन को बंद करिए। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो एडवेंचर के लिए आपने दिखाई थी ये हॉरर शो में बदल गया है, मैं रो रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, कृपा करके इस शो को बंद करके अपना जो दो हाथ वाला स्वरूप है वो मुझे दिखाइए। सोचने की बात है, कई प्रकार के धर्म आज इस दुनिया में उपस्थित हैं या एस्टैब्लिश्ड हैं। ज़्यादातर धर्मों में भगवान का जो स्वरूप है वो इस प्रकार बताया जाता है कि वो बहुत गंभीर होते हैं, अगर उनकी आज्ञा का पालन ना करो तो वो दंड देते हैं। अगर हम भगवद्गीता के अनुसार देखें, वैदिक शास्त्रों के अनुसार देखें तो भगवान का असली स्वरूप ये नहीं है। हाँ ये भी एक स्वरूप है, पर वो स्वरूप जो वो कर्म है लोगों को समझाने का सुधारने का भगवान अपने आप नहीं करते, अपनी माया शक्ति के अनुसार करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार करते हैं। पर भगवान, अगर आप कभी भी राधा कृष्ण के मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को पकड़े मधुर से बांसुरी बजा रहे होते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना और प्रेम बांटने में सबसे अधिक आनंद आता है, ही लव्स टू इन्जॉय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस भगवद्गीता के मैसेज के साथ सभी जीवों को भगवान के संग डायरेक्ट संबंध जोड़ने के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं। और शिला प्रभुपाद के कृपा के द्वारा आज हमें इस भगवद्गीता के रहस्य को समझने का मौका मिला है और बड़ा सरल मार्ग मिला है कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के संग, जिनको समझना बहुत जटिल होता है, उसका उल्लेख अभी आगे आएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण 45वें श्लोक के बाद आगे वर्णन करते हैं, अर्जुन मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस विराट रूप का दर्शन बंद करता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु कृपा करके मुझे चतुर्भुज के दर्शन कराइए, अंत में चतुर्भुज दर्शन के बाद मुझे अपने इस कृष्ण रूप का ही दर्शन कराइए। तो समय जब भगवान अर्जुन को अपना चतुर्भुज का दर्शन कराते हैं और फिर अंत में कृष्ण रूप का दर्शन कराने वाले होते, तो उस समय कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो स्वरूप आप मेरा आप देखने वाले हो कृष्ण के रूप में, वो सबसे मुश्किल है देखना, वो सबसे जटिल है देखना, पर तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें मैं वो दर्शन कराऊंगा। मेरा मतलब यही था कि आज शिला प्रभुपाद की कृपा के द्वारा आज हम सभी को ये मौका मिला है भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को जानना और भगवान श्री कृष्ण के संग संबंध जोड़ना। और कैसे संबंध जोड़ा जा सकता है? बड़ा ही सरल मार्ग है जो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। कृपा करके हाथ ऊपर उठा के हरि नाम संकीर्तन में भाग लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति किसी भी काल में भगवान के संग संबंध जोड़ सकता है। इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है? इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस भगवद्गीता के 11वें अध्याय में इस प्रकार बताते हैं कि अर्जुन पहली चीज जो श्लोक संख्या 46 से लेकर आखिरी श्लोक तक तीन प्रमुख विषयों पर बात करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को विराम देंगे, जहाँ भगवान कहते हैं सबसे पहले अर्जुन सभी रूप या सभी फॉर्म्स मुझसे अवतरित होती हैं। कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया, फिर नारायण चतुर्भुज और अंत में भगवान श्री कृष्ण का। दूसरी बात भगवान हमें ऐसे कहते हैं अर्जुन भगवान को जानने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक मंडेन दृष्टिकोण होता है जहाँ पे व्यक्ति भगवान को एक ऐतिहासिक कैरेक्टर समझते हैं या मनुष्य के समान। एक स्पेकुलेटिव तरीका होता है, काल्पनिक तरीका होता है, जहाँ लोग भगवान को अन्य देवी देवताओं के समान या विराट रूप के समान समझते हैं। और तीसरा वैदिक तरीका होता है या परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका होता है, जहाँ भक्ति के माध्यम से लोग भगवान के रहस्य को समझ सकते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं 48वें श्लोक से लेकर श्लोक संख्या 53 और 54 तक भगवान कहते हैं अर्जुन अगर मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, भक्ति भक्ति और भक्ति, मेरे भक्तों की शरण में रह के संग में रहकर भक्ति के नियमों का पालन करना। और जो भक्ति के नियमों का पालन करता है कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जो मेरी सेवा करने में लगा है मैं उसको स्वयं बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे पास वापस आ सके। इस प्रकार भगवद्गीता के 11वें अध्याय का यह समापन होता है विराट रूप का। जब हम कल दोबारा मिलेंगे तो उसमें 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।